नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिए जाने की खबरों का मंगलवार को स्वागत किया और फैसले को एक बड़ा कदम बताया। मुफ्ती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, मैं खुद पुरुषों के वर्चस्व वाले कठिन राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा हूं। मुझे देखकर खुशी हो रही है कि आखिरकार महिला आरक्षण विधेयक एक वास्तविकता बन जाएगा। आधी आबादी होने के बावजूद हमारा प्रतिनिधित्व बेहद कम है, ये एक बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में कहा था कि मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, लेकिन उन्होंने एक घंटे के भीतर ही अपना ये पोस्ट हटा दिया। मंत्रिमंडल की बैठक में क्या चर्चा हुई इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। खालिस्तानी आतंकियों के मामले में G20 शिखर सम्मेलन में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान दिया। ट्रूडो ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच कनेक्शन की जाँच कर रही है। कनाडा पीएम ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमी पर हत्या में किसी दूसरे देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कनाडा ने भारत के साथ व्यापार समझौता भी रद्द कर दिया। निज्जर की हत्या को ट्रूडो ने अपने देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। उनके इस बयान के साथ ही कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। कनाडा के विदेश मंत्री मैनाली जोली ने राजनयिक को निकालने का ऐलान करते हुए कहा कि उनका देश हर हाल में अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को NIA ने भगोड़ा घोषित कर रखा था। इसी साल 18 जून को आतंकी निज्जर की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे की पार्किंग में खड़ा था। रंग बिरंगे परिधान पहने राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों ने संसदीय कार्यवाही के नए संसद भवन में स्थानांतरित होने से कुछ घंटे पहले पुराने संसद भवन में मंगलवार को एक सामूहिक तस्वीर खिंचवाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ पुराने संसद भवन की भीतरी प्रांगण में पहली पंक्ति में बैठे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के लोकसभा सदस्य 93 वर्षीय शफीक उर रहमान बर्क, अनुभवी नेता शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा भी पहली पंक्ति में बैठे नेताओं में शामिल थे। महिला सदस्य रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर पुराने संसद भवन पहुंचे, जबकि अधिकतर पुरुष सांसद कुर्ता पायजामा और अलग अलग रंगों के वेस्टकोट पहने नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुझाव दिया कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आज हम यहां से विदा लेकर संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये बहुत शुभ है कि गणेश चतुर्थी के दिन वहां बैठ रहे हैं। उन्होंने भारत की संसद की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, मेरा सुझाव है कि जैसे कि हम नए भवन में जा रहे हैं, इस इमारत की महिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी संसद नहीं कहा जाना चाहिए, इसे संविधान सदन का नाम दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेर नाग में मुठभेड़ के दौरान लापता हुए जवान का शव 5 दिन बाद बरामद किया गया। 27 साल के प्रदीप सिंह 13 सितंबर से ही लापता थे। 18 सितंबर की शाम 5 बजे उन्हें मृत पाया गया। इस तरह दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में हुए मुठभेड़ में शहीद होने वाले जवानों की संख्या 4 हो गई। वह कोकेर नाग में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इलाके के घने जंगलों में अभी सर्च ऑपरेशन चला रही है। अनंतनाग मुठभेड़ में जान गंवाने वाले 3 अन्य लोग 19वीं राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष ढोंचक और DSP हुमायूं मुजमिल भट्ट थे। खुफिया जानकारी के आधार पर ये लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी आतंकियों ने इन पर अटैक कर दिया। आदित्य L1 ने एक और खुशखबरी दी है। वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने की जानकारी सामने आने के अगले दिन ही ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया। अब ये अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इसे 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। फिलहाल ये पृथ्वी की 50,000 किलोमीटर की गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकला है। इसरो द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदित्य L1 सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि में करीब 2 बजे तय प्रक्रिया के तहत धरती के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आगे निकल गया। इसे पृथ्वी सूर्य प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने के लिए करीब 4 महीने का समय लगेगा। आयकर विभाग ने धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार किसी फंड, ट्रस्ट, संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक व चिकित्सकीय संस्थान द्वारा फॉर्म 10B/10BB में 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को भी 1 महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2023 कर दिया गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।